अध्याय 19 क्षमा का माप। यह अध्याय मत्ती 18 आयत 22 पर आधारित है। पत्रस इस सवाल के साथ मसीह के पास आया था, मेरा भाई मेरे खिलाफ कितना पाप करेगा और मैं उसे माफ कर दूं? 7 बार तक। रबियों ने क्षमा व्यायाम को 3 अपराधों तक सीमित कर दिया। पत्रस मसीह की शिक्षा को जैसा उसने सोचा था उसे 7 बार तक विस्तारित कर रहा। ये संख्या पूर्णता को दर्शाता है, लेकिन मसीह ने सिखाया कि हम कभी भी क्षमा करने से थके नहीं हैं। 7 बार तक नहीं, लेकिन 70 गुना 7 तक। फिर उसने वो सच्चा आधार दिखाया जिस पर क्षमा दी जानी है और एक अक्षम आत्मा को पोषित करने का खतरा है। एक दृष्टांत में उन्होंने एक राजा से उन अधिकारियों के साथ व्यवहार करने की बात कही जिन्होंने उनकी सरकार के मामलों का संचालन किया। इनमें से कुछ अधिकारी राज्य से संबंधित बड़ी रकम की प्राप्ति में थे। उसके सामने एक आदमी लाया गया था जिसके खाते में 10,000 प्रतिभाओं के योग के लिए उसके स्वामी का कर्ज था। उसके पास भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था और रिवाज के अनुसार राजा ने उसे बेचने का आदेश दिया। जिसके पास वो सब था उसका भुगतान हो सकता है, लेकिन घबराया हुआ आदमी उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मेरे साथ सब्र रखो और मैं तुम सबको चुकाऊंगा। तब उस नौकर के मालिक ने दया से उसका उद्देशार माफ कर दिया। लेकिन वही नौकर बाहर गया और अपने एक साथी सेवक को पाया जिस पर उसका 100 मन बकाया था। उसने उस पर हाथ रखा और गले से पकड़कर कहा कि मेरा भुगतान करो। वो नौकर ने कहा, मैं तुम्हारा भुगतान पूरा कर दूंगा। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसे जेल में डाल दिया जब तक कि वो उसका भुगतान नहीं करेगा। जब उसके साथियों ने ये सब देखा तो वो बहुत पछताए और अपने प्रभु के पास एक ऐसा संदेश आया था जो उसके स्वामी ने उसे बाद में उसे बुलाया। उसने उससे कहा, हे दुष्ट सेवक, मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझे सबसे बड़ा माना। क्या तुझे भी तेरे सहपाठी पर दया नहीं आई, यहां तक कि मुझे तुम पर दया आई थी? और उसका स्वामी बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसे सताने वालों के हवाले कर दिया जब तक कि वो उसका पूरा कर्जा न चुकाए। यह दृष्टांत विवरण प्रस्तुत करता है जो चित्र से भरने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जिसका आध्यात्मिक महत्व में कोई प्रतिपक्ष नहीं होता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ महान सच्चाइयों को चित्रित किया गया है और इन पर हमारा विचार दिया जाना चाहिए। इस राजा द्वारा दी गई क्षमा सभी पापों की एक दिव्य क्षमा का प्रतिनिधित्व राजा द्वारा किया जाता है जो करुणा के साथ आगे बढ़ता है, अपने सेवक का कर्ज माफ करता है। मनुष्य टूटे हुए कानून की निंदा के अधीन था, वो खुद को नहीं बचा सका और इसी कारण से मसीह इस दुनिया में आया, मानवता के साथ अपनी दिव्यता को जिया और अन्यायी के लिए अपना जीवन दिया। उसने हमारे पापों के लिए खुद को दिया और हर आत्मा को वो स्वतंत्र रूप से रक्त खरीदी क्षमा प्रदान करता है। ईश्वर के साथ दया और उसके साथ है अत्याधिक उद्धार, भजन संहिता 130 आयत 7। यही वो आधार है जिस पर हमें अपने साथी पापियों के प्रति करुणा का प्रयोग करना चाहिए। यदि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं तो हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, यूहन्ना 4 आयत 11। स्वतंत्र रूप से आपको प्राप्त हुआ है, मसीह कहते हैं स्वतंत्र रूप से दें, मत्ती 10 आयत 8।
दृष्टांत में जब ऋणी ने विलंब के लिए निवेदन किया इस वादे के साथ, मेरे साथ धैर्य रखो और मैं तुम सबका भुगतान कर दूंगा, वाक्य निरस्त कर दिया गया, पूरा कर्ज रद्द कर दिया गया। उसने जल्दी ही उस गुरु के उदाहरण का अनुसरण करने का अवसर दिया जिसने उसे माफ कर दिया था। बाहर जाकर वह एक साथी सेवक से मिला जिसने उसे एक छोटी राशि देनी थी। उस 10,000 मुद्राएं को माफ कर दिया गया था। ऋणी में उस पर 100 मुद्राएं का बकाया कर दिया, लेकिन वह जो बहुत दयालु था अपने साथी मजदूर के साथ पूरी तरह से अलग तरीके से पेश आया। उसके कर्जदार ने उससे एक अपील की जो उसने खुद राजा से की थी, लेकिन एक समान परिणाम के बिना। वह जो हाल ही में माफ कर दिया गया था वह कोमल और दयनीय नहीं था, दया ने उसे दिखाया। उसने अपने संगी साथियों के साथ व्यवहार नहीं किया, उन्होंने धैर्य रखने का अनुरोध नहीं किया, उसके लिए जो छोटी रकम बकाया थी वह सभी कप्तधन नौकर को ध्यान में रखनी थी। उसने सभी को मांग की कि वह अपने नियम समय के बारे में सोचे और एक वाक्य को लागू करें जो उसके लिए गंभीर था। आज कितने लोग उसकी भावना को प्रकट कर रहे हैं। जब ऋणी ने अपने स्वामी से दया की याचना की तब उन्हें अपने ऋण की महानता का कोई सही अर्थ नहीं था। उसे अपनी लाचारी का एहसास नहीं था। उसने वह खुद को देने की आशा व्यक्त की। मेरे साथ धैर्य रखो, उसने कहा, और मैं सब चुकाऊंगा। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वयं के कार्यों से आशा करते हैं कि वे परमेश्वर के पक्ष में योग्यता प्राप्त करेंगे। वे अपनी लाचारी से संबंधित नहीं है। वे ईश्वर की कृपा को मुफ्त उपहार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं को धार्मिकता में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना टूटा नहीं है और पाप के कारण दीन है, और वे दूसरों के प्रति सही और अक्षम है। ईश्वर के खिलाफ उनके अपने पापों की तुलना में उनके भाई के पापों के साथ साथ 100 मुद्राएं के लिए 1000 मुद्राएं हैं। लगभग 1000 से एक, अभी तक वे उनमें माफ करने की हिम्मत नहीं। दृष्टांत में स्वामी ने स्वार्थी ऋणी को बुलाया और उससे कहा, हे दुष्ट सेवक, मैंने तेरा वह कर्जा माफ कर दिया है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद किया। क्योंकि तुझे भी मेरे सहवास पर दया नहीं आई होगी, तुझे और उसके स्वामी को तबाह किया गया और उसे तड़पाने वालों तक पहुंचाया, जब तक कि उसके कारण वह सब तुम अपने दिलों से हर भाई को उनके अत्याचारों पर माफ नहीं करते। वह जो क्षमा करने में इनकार करता है वह क्षमा की अपनी आशा को दूर कर रहा है। लेकिन इस दृष्टांत की शिक्षा को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। हमारे प्रति परमेश्वर की क्षमा किसी भी बुद्धिमान में कम नहीं है कि हमारा कर्तव्य उसका पालन करे। इसलिए हमारे साथी पुरुषों के प्रति क्षमा की भावना सिर्फ दायित्व का दावा कम नहीं करती है। प्रार्थना में जो मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, उसने कहा, हमें हमारे ऋणों को माफ कर दो क्योंकि हम अपने देनदारों को दया करते हैं। मत्ती 6:12। इसके द्वारा उनका यह मतलब नहीं था कि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमें अपने देनदारों से हमारे बकाया की पुनः प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। यदि वे भुगतान नहीं कर सकते हैं, भले ही यह नासमझ या कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन दृष्टांत हमें असहिष्णुता को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन घोषित करता है कि यदि कोई आदमी काम नहीं करेगा, नहीं वह भोजन करेगा। थिस्सलुनीकियों 3:10। प्रभु को मेहनत करने वाले व्यक्ति आलस्य में दूसरों का समर्थन करने की आवश्यकता चाहते हैं। अगर इन लोगों के पास समय का अभाव है, प्रयास की कमी है, जो गरीबी चाहते हैं, अगर इन दोषों को उन लोगों द्वारा नहीं किया जाता है जो उन्हें लिप्त करते हैं, तो उनकी ओर से किया जाने वाला सब कुछ खजाने के साथ बैग में डालने जैसे होगा। अभी तक अपरिहार्य गरीबी है और हम उन लोगों के प्रति एक उदासीनता दिखाते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम स्वयं करते हैं, जैसे परिस्थितियों में वह इलाज करना चाहते हैं।
प्रेषित पौलुस के जरिए पवित्र आत्मा हमें आरोपित करता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित भी चिंता करो। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेकिन पाप को हल्के में नहीं माना जाता है। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम अपने भाई पर गलत प्रभाव न डाले। वो कहता है, यदि तेरा भाई तेरे खिलाफ अत्याचार करता है तो उसे डांटे। लूका 17:3। पाप को उसके सही नाम से बुलाया जाना है और गलत तरीके से पेश आने से पहले स्पष्ट रूप से रखा जाना है। विरोधी के अपने आरोप में पवित्र आत्मा द्वारा पौलुस लिखते हैं कि तू वचन को प्रचार कर,
समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। दूसरा तिमुथियुस 4:2। और तीतस को वो लिखते हैं क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेषकर खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु, आलसी और पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतौनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। तीतुस 1:10-13। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध जाएगा तो, मसीह ने कहा, यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसे उसका दोष बता। यदि वो तेरी सुन ले तो तूने अपने बंधु को फिर जीत लिया है, पर यदि वो तेरी न सुने तो दो एक को ले जा, ताकि हर बात की दो तीन गवाही हो सके। यदि वह उनकी न सुने तो कलीसिया को बता दे, और यदि वो कलीसिया को भी न माने तो तू उससे ऐसा व्यवहार कर जैसे वो विधर्मी हो या वसूलने वाला हो। मत्ती 18:15-17। हमारे ईश्वर सिखाते हैं कि मसीहों के बीच कठिनाई के मामलों को चर्च के भीतर सुलझाया जाता है। उन्हें उन लोगों के सामने नहीं खोला जाना चाहिए जो ईश्वर से नहीं डरते। यदि एक मसीही अपने भाई के अन्याय करता है तो उसे न्याय की अदालत में अविश्वासियों के लिए अपील न करे। मसीह के द्वारा दी गई तंत्रिका को उसका अनुसरण करने दो। खुद का बदला लेने की कोशिश करने बजाय उसे अपने भाई को बचाने की कोशिश करें। ईश्वर उन लोगों के हितों की रक्षा करेगा जो उसे एक प्यारे से प्यार करते हैं, और विश्वास के साथ हम अपने मामले को सही तरीके से न्याय कर सकते हैं। बहुत बार गलतियां बार बार की जाती है, और गलत काम करने वाला अपनी गलती कबूल करता है तो घायल हो जाता है और सोचता है कि उसने काफ माफ कर दिया है। लेकिन उद्धारकर्ता ने स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि किस तरह से गलत व्यवहार किया जाता है। यदि तेरा भाई तेरे खिलाफ अत्याचार करता है तो उसे डांटे, और यदि वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर। लूका 17:3-4। और उसे अपने आत्मविश्वास के योग्य न माने। विचार करें अपने आप को, ऐसा न हो कि आप भी परीक्षा में पड़ जाएं। गलातियों 6:1। यदि आपके भाई गलत करते हैं तो आप उन्हें माफ कर देंगे, फिर वे आपके पास स्वीकारोक्ति के साथ आते हैं। आपको नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वे पर्याप्त विनम्र हैं, मुझे नहीं लगता कि वे अपनी स्वीकारोक्ति महसूस करते हैं। आपके पास उन्हें जज करने का क्या अधिकार है जैसे कि आप दिल पढ़ सकते हैं? ईश्वर का वचन कहता है, यदि वो अपने किए पर पछताए तो उसे क्षमा कर दो। यदि हर दिन वो तेरे विरुद्ध 7 बार पाप करे और 7ों बार लौटकर तुमसे कहे कि मुझे पछतावा है, तो तू उसे क्षमा कर दे। और न केवल 7 बार बल्कि 70 × 7 ऐसे रूप में अक्सर ईश्वर माफ कर देता है।
हम स्वयं ईश्वर की स्वतंत्र कृपा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वाचा में अनुग्रह ने हमें अपना लिया, उद्धारकर्ता में अनुग्रह ने हमारे छुटकारे, हमारे उत्थान को प्रभावित किया, इस कृपा को दूसरों पर प्रकट करने दी, हतोत्साहित करने के लिए किसी को कोई अवसर न दे, पीड़ित होने के लिए और अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए एक कठिन कठोरता नहीं है, मन या दिल में कोई कड़वा चोट न दे, आवाज में तिरस्कार का कोई स्वर प्रकट न होने दे। यदि आप अपनी बात कहते हैं, यदि आप उदासीनता का रवैया अपनाते हैं या संदेह या अविश्वास दिखाते हैं, तो यह आत्मा की बर्बादी साबित हो सकती है। उसे मानवता के दिल को छूने के लिए सहानुभूति के बड़े भाई के दिल के साथ एक भाई की आवश्यकता है। उसे एक सहानुभूति का मजबूत पकड़ महसूस करने दे, और कानाफूसी सुने और प्रार्थना करें। ईश्वर आप दोनों को एक समृद्ध अनुभव देंगे। प्रार्थना हमें एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ एकजुट करती है। प्रार्थना यीशु को हमारे पक्ष में लाती है, और दुनिया और शैतान को दूर करने के लिए बेहोश, हैरान आत्मा को नई ताकत देती है।
प्रार्थना शैतान के हमलों को एक तरफ कर देती है। जब कोई यीशु को देखने के लिए मानवीय खामियों से दूर जाता है तो चरित्र में दिव्य परिवर्तन हो जाता है। दिल पर काम करने वाले मसीह की भावना उसकी छवि के अनुरूप है। फिर इसे यीशु को उठाने का प्रयास करने दे। मन की ईश्वर की आत्मा मोने को निर्देशित किया जाता, जो दुनिया के पाप को दूर करता है। यूहन्ना 1:29। और जब आप इस काम में संलग्न होते हैं तो याद रखें, जो किसी पापी को पाप के मार्ग से लौटा लाता है, वो उस पापी की आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है और उसके उनके पापों को क्षमा किए जाने का कारण बनता है। याकूब 5:20। लेकिन अगर आप अपने अत्याचारों को क्षमा नहीं करते हैं तो ना तो आपके पिता आपके अत्याचारों को क्षमा करेंगे। मत्ती 6:15। कुछ भी एक अटूट भावना को सही नहीं ठहरा सकता। वो जो दूसरों की क्षमा की गई गलती का हृदय असीम प्रेम के महान हृदय के करीब आ जाता है। ईश्वरीय करुणा का ज्वार पापी की आत्मा में और उससे दूसरे की आत्माओं में प्रवाहित होता है। मसीह ने जाता दया और दया प्रकट की है, वो अपने में अनमोल है। जीवन उन लोगों में देखा जाएगा जो उनकी कृपा के हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन अगर किसी में मसीह की भावना नहीं है तो वो उनका कोई नहीं है। रोमियो 8:9। वो ईश्वर से अलग अलग है, केवल उससे अलग होने के लिए सनातन से अलग होते। ये सच है कि उसे एक बार माफी मिल सकती है, लेकिन उसकी अदम्य भावना दिखाती है कि वो सब परमेश्वर के प्यार को अस्वीकार कर देता है। उसने आपको ईश्वर से अलग कर लिया है और क्षमा करने से पहले जैसी हालत में है। उसने अपने पश्चाताप से इनकार किया है और उसके पाप उस पर हैं, जैसे कि उसने पश्चाताप नहीं किया था। लेकिन दृष्टांत का महान सबक ईश्वर की करुणा और मनुष्य की कठोरता के बीच विपरीत है, इस तथ्य में कि ईश्वर की क्षमा दया हमारे स्वयं का उपाय है। क्या तुम्हें भी अपने सहचर पर दया नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तुम पर दया आई थी? हमें माफ नहीं किया जाता क्योंकि हम क्षमा करते हैं, लेकिन जैसा कि हम क्षमा करते हैं, सभी क्षमा का आधार ईश्वर के एक तरफा प्यार में पाया गया है। लेकिन दूसरों के प्रति हमारे रवैया से हम दिखाते हैं कि क्या हमने उस प्यार को अपना बनाया है। इसके अलावा मसीह कहता है, तुम किस निर्णय के साथ न्याय करोगे और किस उपाय से तुम मिलोगे, ये तुम्हारे लिए फिर से मापा जाएगा।